بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے معزز بھائیو، ہمارے مقدس بزرگ، ہماری مائیں و بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہترین علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دین کی بات سننے کے لیے جو وقت آپ نے فارغ فرمایا، اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں. انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء کے ساتھ آپ کا حشر فرمائیں، اور جن بزرگوں کی باتیں یہاں بیان ہوں گی، اللہ پاک ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. جب ہم اللہ کو یاد فرمائیں گے، اللہ پاک ہمیں فرشتوں کے مجمع میں یاد فرمائے گا. جو آدمی دین سیکھنے جائے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور علم دین کا ایک باب سیکھ لینا ایسا ہے کہ جیسا ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے کا ثواب. جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتی ہے، نور نکلتا ہے وہاں سے. جو لوگ اللہ کے واسطے بیٹھے، اللہ کے واسطے واپس گئے، وہ قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے. اتنی فضیلتیں ماشاءاللہ. اللہ کی مخلوق دعائیں کرتی ہے جو آدمی دین سیکھنے جاتا ہے. تو جب بھی ہم دین سیکھنے کی مجلس میں بیٹھیں تو اپنی نیتیں ٹھیک کریں. ایک معمولی سا کام اچھی نیت سے پہاڑوں کے برابر ثواب لا سکتا ہے، اور دین کے بڑے بڑے کام سالہ سال کے وہ نیت خراب ہونے سے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے نیت کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. کیا نیت ہے؟ کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اور ساری امت کے ہر بھائی اور بہن کے لیے خیرخواہی سے نیت کی جائے، کہ سب لوگ اللہ کے ولی بن جائیں، سب کی توبہ قبول ہو جائے، شیطان اور نفس کے بہکانے سے بچ جائیں، اور گناہ اور نافرمانی سے بھی بچ جائیں، سب کی غفلت، سستی اور کاہلی دور ہو جائے. اچھی اچھی دعائیں، ذکر، درود شریف، استغفار، یہ سب کی زبانوں پر جاری ہو جائے، اور سب کے دل صاف ہو جائیں حسد سے، بغض سے، کینے سے، بدگمانی سے، بری باتوں سے، شکایتوں سے. دل پاک صاف، دل معلوم ہے کہ ہے ہی نہیں، بس اللہ کی محبت میں دل کام کر رہا ہے، تلاوت، ذکر، اچھی اچھی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، کوئی پریشانی نہیں. زندگی سنت طریقوں کے مطابق آ جائے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب آئیڈیل ہو جائے، صراط مستقیم پر چلنے لگے، ہائی وے ٹو ہیون، صراط مستقیم. اور نفس مطمئنہ ہو جائے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماری طبیعت بن جائے، سیکنڈ نیچر، مجھ کو بھی وہی پسند جو اللہ کو پسند. دنیا میں حیات طیبہ مل جائے، پاکیزہ زندگی، صحت، سلامتی، چین، سکون اور عمدہ رزق، دعاؤں کی قبولیت، اور آخرت میں آسان حساب، مغفرت اور جنت الفردوس میں درجات مل جائے. اب اتنی طلب لے کر، شوق لے کر آدمی، جو میں سننے والے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، شوق سے بیٹھیں. اگر ممکن ہو تو باوضو بیٹھیں، قبلہ رو بیٹھیں، مصلے پر یا کرسی پر بیٹھیں. آج کا مضمون بہت اہم ہے، اگر اس کو لکھ لیا جائے یا اپنی زبان میں، اردو میں یا انگریزی میں کچھ پوائنٹس لکھ لیے جائیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گا، اور دوسروں کو دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنے گا. آج کا پورا مضمون ایک ہی ٹاپک پر ہے، کیونکہ بہت اہم ہے، اور ہمارے مسلمان گھرانوں میں اور پوری دنیا میں اس وقت بہت اہم مسئلہ ہے. اور بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ دوسرے سے پوچھنے میں بھی گھبراتے ہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی سے ابتدا کی جائے، کہ وہ اللہ سب کے خالق اور مالک اور رازق. دنیا میں کروڑوں عقل مند لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک عقل عطا فرماتے ہیں، اور لاکھوں مضبوط طاقتور لوگ ہیں، ان کو طاقت عطا فرماتے ہیں. کروڑوں خوبصورت لوگ ہیں، اللہ ان کو خوبصورتی دیتے ہیں، اور کروڑوں مائیں ہیں، اللہ پاک ان کو رحم دلی اور محبت دیتے ہیں. اللہ پاک کتنے بڑے، ان کے خزانے کتنے زیادہ. جو اللہ جس کا دوست ہو جائے اس کو کوئی غمی نہیں، اللہ ہمارا دوست ہے. سوال کرنے سے پہلے دل میں نیک بات ڈالتے ہیں، اور عرض کرنے اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں، لے لو. ابھی ارادہ کیا تھا کہ اگلی نماز میں مانگیں گے، چیز آ گئی، لو. اللہ جس کا دوست ہو جائے تو اس کو کیا غم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، وی آئی پی ہو گیا دنیا آخرت. अल्लाह ताला माजी हाल मुस्तकबिल को हमसे ज़्यादा जानते हैं, हिकमत वाले हैं, बंदों की मसलहत समझते हैं, 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान हैं और हमारे फ़ायदे को हमसे ज़्यादा जानते हैं। दुनिया आखरत में, कब्र हशर में आदमी का सबसे बड़ा दोस्त अल्लाह सुबहान होता है, और कोई हो ही नहीं सकता, हमारे फ़ायदे को हमसे ज़्यादा जानते। तो भाई ऐसे अल्लाह की इबादत, ऐसे अल्लाह से दुआएं मांगना, दूसरे लोग उनसे बार बार मांगो तो नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह पाक से बार बार मांगो अल्लाह खुश होते हैं, और मांगो और मांगो, दिन भर मांगते रहो, पूरे 70 साल मांगते रहो, अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे। तो इस्तिग़फ़ार दरूद शरीफ पढ़कर ध्यान और तवज्जो से बैठिए। लुक़मान हकीम ने नसीहत फरमाई कि उलमा के पास बैठा करो, नेक लोगों के पास बैठो, और फरमाया एक जगह कि जब अल्लाह वालों पर रहमत नाजिल होगी तो कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाएगा। जैसे बारिश होती है तो हर जगह बाहर भी सब भीग जाते हैं, तो अल्लाह वालों पर रहमत नाजिल होगी तो हमें भी मिल जाएगा। हर आदमी कामयाबी चाहता है मगर अपनी समझ से अलग अलग तरीक़ा निकाला, और यहाँ पर तालीम में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े। तालीम का मकसद अल्लाह की अजमत आ जाए, वादों का यकीन आ जाए, दुनिया और आखरत की हकीकत समझ में आ जाए, ज़िंदगी का मकसद समझ में आ जाए, नेकियों की दौड़ में लग जाए। हमारी आँख से जो नज़र आता है और कान से जो सुन रहे हैं उसमें तो गलती हो सकती है, हो सकता है कि हकीकत कुछ और हो, लेकिन जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं वो 100% ठीक है, उसमें गलती हो ही नहीं सकती, मेरे फ़ायदे की बात। ऐसे यकीन के साथ बैठे हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली के बहुत बड़े हिंदुस्तान के शेख निज़ामुद्दीन हज़रत ने वाक़या अपना बताया कि उनकी वालदा इतनी अल्लाह की वली, अल्लाह के करीब इतना उनका मुकाम था। फरमाते हैं कि मेरी वालदा को जब कोई ज़िंदगी में ज़रूरत होती तो 500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर अपना दामन फैला के दुआ मांगती थी और जो चाहती थी मिल जाता था। कभी कभी ऐसा होता कि घर में खाने को कुछ नहीं होता तो वालदा खुश हो जाती हैं, फरमाती हैं कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो निज़ामुद्दीन को इस बात से खास खुशी होती थी, छोटे बच्चे थे जब अम्मा कहती थी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, यानी आज खाना नहीं पकेगा, आज ऐसी रहना, तो बहुत खुशी होती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक आदमी कुछ अशरफियाँ कुछ पैसे डालकर हदिया दे के चला गया, और वो बहुत दिनों तक चलता रहा, उसका गल्ला खाना आता रहा। तो निज़ामुद्दीन कहते हैं कि मैं तंग आ गया कि कब ये ख़त्म हो और वालदा कहें कि हम आज अल्लाह के मेहमान। ऐसा जहन बन गया था, ऐसा जहन बन गया था। जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद ही ज़ियारत के लिए कब्र शरीफ पे जाया करते थे। निज़ामुद्दीन फरमाते थे कि उनका दस्तूर था कि हर महीने की पहली तारीख को वालदा की ज़्यारत को जाते हयात में भी, और कदमों पर गिर जाते, वालदा की रिस्पेक्ट के लिए कदमों पर गिर जाते जाते। तो जब वालदा का इंतकाल हो गया और कब्र शरीफ में चली गई तो उसके बाद भी ज़्यारत को जाया करते थे। उस ज़माने का बादशाह था, हिंदुस्तान का बादशाह, इसी बात पर से निज़ामुद्दीन से नाराज़ हो गया बुजुर्ग से, उनको कहा कि आप आया करिए हमारे पास, हमारी मस्जिद में आके पढ़िए नमाज। इन्होंने मना किया, भाई मैं मशगूल हूँ। तो बादशाह ने सज़ा देने का इरादा किया, इन्होंने जाके अम्मा जी के मज़ार पे, कब्र पे जाके कह दिया कि अम्मा जी ये बादशाह तंग कर रहा है और जो है अब ऐसा करेगा तो अब मैं आ नहीं सकूँगा, जा करके बातें की, आके घर में बैठ गए। तो किस्सा ये हुआ कि महीने की पहली तारीख पर बादशाह पर मुसीबत आई कि बादशाह के दरबारियों ने किसी एक ने बादशाह को कत्ल करके किले से बाहर भेज दिया। किस्सा ही खत्म। तो बुजुर्गों की ऐसी शान होती है, अल्लाह से करीब होता है कि कोई उनको तंग करना चाहे अल्लाह पाक हिफाजत फरमाते, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाते, और उनका यकीन और उनकी तवज्जो, अल्लाह पाक हमारे घरानों में हमारे बच्चों को बड़ों को ऐसी तवज्जो और यकीन अता फरमा दे, अल्लाह पाक से ताल्लुक़ हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक तुम में से अपने मातहत पर इख्तियार रखता है। हर एक से पूछा जाएगा तुम्हारे जिम्मे जो चीज़ें थीं उसमें तुमने क्या अमल किया। जैसे औरत के जिम्मे मर्द का घर होता है और बच्चों पर इख्तियार होता है, तो पूछा जाएगा कि आपने अपने घर और बच्चों के साथ क्या बर्ताव किया, कैसा ट्रीट किया। इस तरह मर्द अपने घर में इख्तियार रखता है, उससे भी घर वालों के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपने घर वालों के हुकूक ठीक से अदा किए या नहीं किए। ये शेख हाफिज इनायत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका मजमून है बाग जन्नत। ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा हैं और किताब में लिखा है इन्होंने 100 साल की उम्र पाई और ये बहुत मशहूर होंगे वहाँ इंडिया में अपने इलाके में। तो हजरत ने ये मजमून लिखा है, तजुर्बे की बात है कि जब आदमी पर कोई मुसीबत आती है तो यार दोस्त सब अलग हो जाते हैं, हत्ता कि माँ बाप भी आदमी को छोड़ देते हैं, लेकिन बीवी हर हालत में मर्द का साथ देती है और बीमारी में जैसी राहत अपने बीवी से पहुंचती है किसी भाई से नहीं पहुंचती। इससे साफ जाहिर हुआ कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं। तो अब उसके बाद हजरत ने लिखा कि घर वालों का हक है कि उनके साथ हंसी और उनके नाज नखरे को गवारा किया जाए और कोई छोटी मोटी बात हो जाए, बेतमीजी हो जाए, उसको बर्दाश्त किया जाए। हजरत ने लिखा कि बाज मर्द ये चाहते हैं कि औरतें हमारी तरह तमीज़दार और सलीकामंद होकर रहें, और जब कोई बात में ऊंच नीच हो जाती तो उस पर सख्त सज़ा दी जाती है। औरत का हक ये है कि उनकी बेतमीज़ी को बर्दाश्त किया जाए। फिर हजरत ने तारीफ़ लिखी कि ज़्यादातर बेतमीज़ वही होती हैं जो सीधी सादी होती हैं, और ऐसी औरतें बहुत नेक होती हैं, वरना अगर कोई सलीकामंद ज़्यादा होती लेकिन चालाक होती और शर्म व हया कम होती तो कितनी मुश्किल होती। सीधी सादी और ऐसी जानिसार होती हैं अपने घर के मर्दों पर, अपने शौहर पर, कि बीवी खुद बीमार है, उठने बैठने की ताकत नहीं, लेकिन अगर मर्द बीमार हो गया तो अपनी बीमारी को भूल जाती और खिदमत में लगी रहती हैं। और रोज़ की बात है कि औरतें अपना खाना आखिर में खाती हैं और सबसे पहले मर्दों को खिलाती हैं। कितना ही मज़ेदार खाना, खुशबूदार, घंटों सुबह से दोपहर तक लगे, 3-4 घंटे तैयार हुआ, लेकिन उसमें सबसे अच्छी जो डिश है और मज़े की बोटी है तो वो मर्दों के सामने आएगी। ऐसा नहीं कि बाटी खाने में गायब हो गया, ठीक है, और कोई मेहमान आ गया और खाना कम था तो खुद भूखी रहेंगी और खाना मेहमान के वास्ते भेज देंगी, उसके बाद जो बचा कुचा रह गया तो वो खा लें, वरना पिछले टाइम की रोटी खा ली, कुछ और बना लिया। अगर मर्द आधी रात को भी सफ़र से वापस आया तो अपना आराम छोड़कर उनके खाना पकाएंगी और खिदमत में लग जाएंगी। अब अगर इसके साथ कोई ऊंच नीच भी हो गई घर में तो उसमें किसी का दिल दुखता है, तकलीफ़ हुई, तो उसमें बर्दाश्त करना चाहिए। और हजरत ने लिखा कि दीन की किताबें पढ़ाइए, सुनाइए, इल्म दीन से सब में सबकी आदतें और अच्छी हो जाएंगी, इल्म दीन सिखाइए घर में। अब इसमें कुछ वाकयात बयान किए जाएंगे, यहाँ पर किसी ख़ास आदमी या महल्ले या इलाके की बात मकसूद नहीं है। होता यह है कि ये घर में छोटी मोटी नोक झोंक, ये इस वक्त उम्मत का बहुत बड़ा मसला है, पूरी उम्मत में, ऑस्ट्रेलिया हो के जापान हो के रशिया हो के चाइना हो, हर जगह यही मसला है। तो कुछ उसके लिए कुछ लतीफ़े और कुछ हकायतें, कुछ बातें पढ़ी जाएंगी, और जब बात हो कि ये बात मर्दों के गौर करने की है तो वो उसको समझें, और ये बात जब हो कि हमारी बहनों के गौर करने की है तो वो उसको समझें, तो इंशाल्लाह सबको फ़ायदा हो जाएगा। ये टॉपिक एक बहुत अरसे से बाकी था और हमारे जो सुनने वाले हैं उन्होंने फरमाया कि इस पर बात हो जाए, इसलिए आज का पूरा हलका इसी बात पर। एक बुज़ुर्ग थे, उनके घर वाले इत्तफाक से ऐसा हुआ कि बदमिजाज थे। उन्होंने बीवी से कहा कि तुम बहुत बदकिस्मत हो, मेरे पास इतने ज़माने से रहती हो मगर तुम्हारी बदमिजाजी नहीं गई। बीवी ने कहा मैं क्यों बदकिस्मत हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन खुशकिस्मत होगी कि मुझको तुम जैसा मर्द मिल गया। बदकिस्मत तुम हो कि तुमको बदमिजाज बीवी मिली। बुजुर्ग ने फरमाया कि आप जीत गई और मैं हार गया, आप जीत गई और मैं हार गया। अल्लाह ताला उन्होंने तारीफ फरमाई, सूरह अन्नूर में तारीफ फरमाई मोमिनात की, और तीन अल्फाज इस्तेमाल किए, मुहसिनात गाफिलात मोमिनात, यानी पाक दामन हैं और सीधी सादी हैं, ईमान वाली हैं, और पूरा नक्शा खींच दिया। और ये खूबी औरतों में पर्दे की वजह से होती है कि उनको अपनी चार दीवारी के सिवा दुनिया की खबर नहीं होती। अल्लाह ताला औरतों के सीधेपन और बेखबरी की तारीफ फरमाते हैं कि समझ लो इसी में खैर है कि शौहर के घर से अलग होना उनको गवारा नहीं होता। एक शख्स आए उमर रदी अल्लाह अन्हो के मकान पर, उमर रदी अल्लाह अन्हो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है। एक आदमी शिकायत करने आए, अपने घर वालों की शिकायत लेकर आए उनके पास, उमर रदी अल्लाह अन्हो के पास। उस वक्त ऐसा हुआ कि उमर रदी अल्लाह अन्हो के घर वाले कुछ नाराज थे और उनको कुछ बातें सुना रहे थे, तो आवाज आ गई। तो वो आदमी बेचारा, मैं तो अपना सुख सफाई कराने आया था, वो लड़ने की आवाज सुनकर लौटने लगे। तो उमर रदी अल्लाह अन्हो बाहर तशरीफ लाए और पूछा उन्होंने क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आया था कि अपनी बीवी का मसला आपसे पूछूंगा, लेकिन आपके साथ भी यही मामला है, मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया अब तक। तो उमर रदी अल्लाह अन्हो ने इसको समझाया कि देखो, मेरे घर वालों के मेरे ऊपर बहुत सारे हक हैं। एक हक ये है कि मुझको दोजख से बचाती हैं और बुरे काम से बचता हूँ, क्या घर वाले ना होते इधर उधर नजर पड़ती क्या होता, दिल खराब होता, तो मुझे जहन्नम से बचाती हैं। दूसरा ये है कि मेरे घर की हिफाजत करती हैं। तीसरी बात यह है कि बच्चों को परवरिश करती हैं, सफाई सुथराई करती हैं, खाना पका के खिलाती हैं, हत्ता कि मैं कपड़े धो करके देती हैं, कितनी खिदमतें करती हैं। तो अगर किसी बात पर नाराज हो जाए तो उसमें क्या बात है। तो नसीहत सुन के वो आदमी कहने लगे कि हजरत, अब मुझे समझ में आई कि वाकई इतने इतने हक हैं उनके, तो इंशाल्लाह अब कोई झगड़ा नहीं हो। घर वापस आए, बीवी के साथ बहुत नरमी से बर्ताव करने लगे और दोनों ने लड़ना झगड़ना सब छोड़ दिया और आपस में मोहब्बत से रहने लगे। ये जो गुस्सा आ जाता है, एक एक डॉक्टर साहब ने मजमून लिखा, डॉक्टर तो इंसान की तबीयत हालत चीज़ें, ब्लड प्रेशर, वो ये चीज़ें समझते हैं, मजमून लिखा उन्होंने। उन्होंने लिखा उसमें, उसका मफहूम है कि अपने प्यारों से खुद को जुदा करने का जो सबसे फास्ट तरीका है वो गुस्सा है। अपने प्यारों को अपने से काटने का सबसे फास्ट जो तरीका है वो गुस्सा है। एक साहब, उन्होंने दरख्वास्त भेजी नसीहत के लिए किसी को, और ये उनके अल्फाज हैं, उनके अल्फाज हैं, यानी तर्जुमा है, अंग्रेजी में बात थी, तर्जुमा है। आदमी कहने लगा कि मुझे अपने बीवी बच्चों से बहुत मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन जब मुझको गुस्सा आता है तो मैं उनको खूब मारता हूँ। इतनी मोहब्बत है कि जिंदा नहीं रह सकता उनके बगैर, लेकिन जब गुस्सा आता है तो मैं उनको खूब मारपीट करता हूँ। अब बताइए क्या इलाज। एक आदमी उसमें दोनों बातें जमा, यानी उनकी लव मैरिज है और फिर लड़ाई भी खूब होती है। तो गुस्से के बारे में फरमाया गया कि ये आग है। गुस्से में तीन चीजें हैं, आग और जंगली जानवर का असर और शैतानी असर। गुस्से में पहली चीज जो खत्म होती है वो अकल खत्म हो जाती है, अकल चली गई, अब कुछ भी करे जंगली जानवर की तरह, आग की तरह, शैतान की तरह। उससे क्या होता है, डिप्रेशन, पागलपन, ऑल फॉल बकना, बुरी हरकत। तो अल्लाह पाक गुस्से से हिफाजत करे। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह 80 साल की उम्र पाई और 60 साल तक दीन की खिदमत की पूरे इंडिया में, और 1000 से ऊपर किताबें लिखी। फरमाते हैं कि कभी याद नहीं कि गुस्सा आ गया हो और बाद में उस पर पछताए ना हो। एक भी मौका ऐसा नहीं आया लाइफ टाइम में कि गुस्सा आ गया हो, बाद में उस पर खुशी हो कि हाँ ठीक आया था। कभी याद नहीं कि गुस्सा आया हो और बाद में उस पर पछताए ना हो। लुकमान हकीम, उनका कौल कई दफा बताया जा चुका है, उन्होंने कहा मैं जब भी पछताया, जब भी रिग्रेट हुआ, बोल करके पछताया, खामोश रह के कभी नहीं पछताया, खामोश रहता तो अच्छा। घर के लड़ाई झगड़े खत्म करने का एक तरीका बताया गया कि जब एक आदमी गुस्सा हो तो दूसरा आदमी, ये वजीफा है, क्या वजीफा है कि मुंह में, पूरे मुंह में पानी लेकर के बैठ जाए, चुल्लू में पानी एक घूंट लेकर बैठ जाए, ना उसको निगलना है ना उसको थूकना है, थोड़ी देर तक ऐसे ही लेकर बैठ जाए। सारा घर का झगड़ा खत्म हो जाता। एक गैर मुस्लिम शेख फरमा रहे थे कि गैर मुस्लिम जो है उनकी मिसाल देखिए कि उनको अपने घर वालों से कितना उनको मोहब्बत होती है। तो गैर मुस्लिम अपने घर वालों को कहता है कि हमें तो मौत ही अपने से जुदा कर सकती है, हमारे तुम्हारे दरमियान सिर्फ मौत जुदा कर सकती है, डेथ। और मुसलमान को कहना चाहिए कि हमें तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती, यहाँ भी साथ, कयामत में भी, हशर में भी, और इंशाल्लाह जन्नत के महल में भी साथ रहेंगे, ऐसा कहना चाहिए। अभी जितने लोग बैठे हैं या थे पहले, 100 साल गुजरेंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, सबकी कब्रें कहीं होंगी। क्या ही अच्छा हो कि घर वाले सब बराबर बराबर में कब्र हो, मजार कहीं तो बनना है, ताकि लोग आए तो फातिहा पढ़े, भाई नाना जी के हैं तो नानी जी भी हैं, दादा जी हैं दादी जी भी हैं, बराबर में फातिहा पढ़ के दोनों को बख्श के जाए, ऐसा चाहिए। तो थोड़ी बहुत जो है ऊंच नीच कभी हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है, तो उसका ख्याल नहीं करना चाहिए। अब उसकी कुछ मिसाल, ये हमारे बुजुर्गों की बातें हैं, लतीफे सुनाते हैं ताकि लोगों का दिल खुश हो। एक बुजुर्ग को बहुत अच्छी करामत थी, उनको अल्लाह ने ऐसी करामत दी कि हवा में उड़ जाते थे। तो एक दिन हवा में उड़े वो और हो करके आए, तो घर वालों ने किसी तरह से देख लिया और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि एक साहब देखो तुम्हारे से भी अच्छे ज्यादा अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हवा में उड़ रहे थे और इतना अच्छा, बहुत अच्छा जा रहे थे। घर वालों ने बड़ी तारीफ की, उन बुजुर्ग ने कहा कि वो तो मैं ही था। तो घर वालों ने फौरन कहा कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि वो इतना टेढ़ा टेढ़ा और खराब सा क्यों उड़ रहा है। एक साहब थे, उनके घर में मामूली सी बात पे नोकझोंक हो गई, उन्होंने कहा कि सालन में नमक ज्यादा है, और घर वालों ने कहा कि नहीं ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, हमारी बात मानी जाएगी, इसमें नमक ज्यादा है और फौरन आप मान लीजिए वरना बहुत मामला खराब हो जाएगा। तो घर वालों ने कहा क्या खराब हो जाएगा, उन्होंने कहा हम फौज बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा मजाक कर रहे हैं, कहाँ से फौज बुला लेंगे, कुछ नहीं। तो इन्होंने अपने, इनके दोस्त थे कोई फौज में, आर्मी में कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा बड़ा हमारा मसला हो गया महल्ले में और हमें फौज की जरूरत है, ऐसा करो कि 200-300 सिपाही भेज दो। तो फौरन आ गए, थोड़ी देर में फौजी पूरे ट्रक से और जनाब उनके खिड़की के बाहर लेफ्ट राइट परेड करने लगे फौजी। उन्हें खिड़की खोल के दिखाया कि अब भी मान लो वरना फौजी है, ये देखो बाप सामने आ गए। बाज दफा छोटी छोटी चीजों में लोग होती, मेरी बात मानी जाए मेरी बात नहीं मानी जाए, तो इसके मसले हैं और इस पे बर्दाश्त करना चाहिए। हजरत ने लिखा किताब बाग़े जन्नत में कि जो आदमी अपनी बीवी को एक मसला सिखाता है, दीन का मसला, शरई मसला, उसको 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है, दीन का एक मसला सिखा दे। इसलिए मर्द को जरूरी है कि बीवी को पाकी नापाकी और वजू गुसल नमाज रोजे और जिंदगी के सारे मसाइल बताए और सवाब हासिल करे, अल्लाह के अजाब से बचे। इसके लिए बहिश्ती जेवर बहुत अच्छी किताब है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, उसको सबकन सबकन हर लेसन उसका पढ़ना चाहिए। तालीमुल इस्लाम है, तालीमुल हक है, और इस तरह फजाइल की किताबें हैं, तो घरों में इस तरह की आसान किताबें पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा। इरशाद फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, उनको नाहक मत सताओ और उनके साथ अच्छी आदतों से ज़िंदगी बसर करो, अगर तुमने उनको नाहक तकलीफ दी और जुल्म किया तो अल्लाह तुमसे बदला लेगा। आगे फरमाया कि आदमी का, शोहर का अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक और दिल लगी करने में नफिल नमाजों के पढ़ने का सवाब मिलता है, नफिल नमाजों के पढ़ने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा घबराई हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, खातून जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार, और उन्हें आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बेटी क्यों घबराई। उन्होंने कहा अब्बा जी रात में बातों बातों में मेरी जबान से ऐसी कुछ बात निकल गई कि मेरे शौहर अली रदी अल्लाह अन्हु नाराज़ हो गए, और उनकी नाराज़गी से मुझे अल्लाह का खौफ मालूम हुआ कि शौहर की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी और वो मेरी खुशामद देखकर हंस पड़े और मुझसे राज़ी हो गए, के बावजूद घबराई हुई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तो ऐसा सहाबा सहाबियात का था अमल कि कोई गलती हो गई फौरन जो है आपस में मिलाप हो गया। फरमाया कि जो औरत 7 दिन तक यानी 1 हफ्ते तक अगर घर में कोई उसको तकलीफ है, अपने शौहर की तरफ से कोई परेशानी तकलीफ है, तो तकलीफ को 1 हफ्ता बर्दाश्त किया तो उसको 700 बरस इबादत करने का सवाब मिलता है। हजरत ने लिखा है तो मैं किताब में से पढ़ के सुना रहा हूँ और इसकी उनके पास कोई दलील होगी कहाँ से उन्होंने लिया है। जो 7 रोज तक मर्द की दी हुई तकलीफ बर्दाश्त कर ले तो 700 बरस इबादत करने का सवाब मिलेगा। दीनदार औरत अपने मर्द को बादशाह बना देती है, ये गलत खर्च नहीं करती, हर हालत में साबिर और शाकिर रहती है, जिसकी वजह से मर्द परेशान नहीं होता। दीनदार बीवी का मिल जाना अल्लाह का एक तोहफा है और दुनिया की चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ दीनदार और फरमा बरदार बीवी का मिलना है। एक सहाबी आए, उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब घर आता हूँ तो मेरी बीवी बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करती है और कहती है मरहबा मेरे सरदार आ गए, मरहबा मेरे सरदार आ गए, और जब मैं परेशान होता हूँ तो तसल्ली देती हैं कि मियाँ दुनिया का क्या गम, आखरत तो हमारी है, दुनिया का क्या गम, आखरत तो हमारी है। उनको बशारत दी गई कि ये आधे जिहाद का सवाब पा लिया इन्होंने, इतनी सी बात है, आधे जिहाद का सवाब पा लिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अच्छी औरत कौन है, फरमाया वो औरत है कि शौहर उसकी तरफ देखे तो उसको खुश कर दे, उसका कहा माने और जान व माल में कोई बात उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ ना करे और बग़ैर इजाज़त के घर से ना जाए। इरशाद फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शैतान रात को समुंदर के ऊपर अपना तख्त बिछाकर अपने लोगों को, चेलों को जमा करता है और उनसे पूछता है कि आज तुमने क्या क्या नाफरमानी कराई, क्या क्या कारगुजारी बताओ, मशवरा कि भाई क्या किया। शैतान अपने चेलों को जमा करके पूछता है कि आज तुमने क्या क्या नाफरमानियाँ कराई, लोगों से बताओ। एक शैतान चेला कहता है कि मैंने लोगों की नमाज छुड़वा दी, कोई कहता है मैंने कोई कत्ल करा दिया, कोई कहता है कहीं शराब पिलवा दी, अपनी अपनी कार्रवाई बयान करते हैं। तो शैतान कहता है, उससे सुनता रहता है कि भाई चलो इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर एक शैतान खड़ा होकर कहता है कि मैंने एक शौहर और बीवी में लड़ाई करा दी, एक घर में शौहर और बीवी में लड़ाई करा दी। शैतान बहुत खुश होता है और खुशी में नाचता कूदता है और उस छोटे शैतान को गले लगा के कहता है कि शाबाश जीते रहो, तुमने खूब काम किया और बुरे कामों में सबसे सबसे ज़्यादा बुरा काम तुमने कर दिया है, क्योंकि जब घर ख़राब हो जाएगा तो सारी नेकियां ख़त्म और सारी बुराइयां आ जाएंगी, तो यहीं से बात शुरू हो जाएगी। तो कोई भी मामला हो जाए घरों में, अजीब बात हो रही है क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहीं और भी सुनते हैं, बाद में भी कहीं ये बात नकल की जाएगी, आप लिख सकते हैं इसको, अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, तो किसी और को फ़ायदा हो जाए, तो आपके ज़रिए से और दुआएं करें आप उम्मत में जो इस वक्त हालात हैं, घरों में झगड़े होते हैं छोटी छोटी बात पे। एक जगह हुआ कि मियाँ बीवी में अलहदगी हो गई, एक शेख ने वाकया लिखा, अलहदगी किस बात पर हुई कि मियाँ साहब आके किचन में ब्रश कर लेते थे और बीवी कहती थी कि आप वहाँ बाथरूम में जाके ब्रश कर लिया करें, तो उन्होंने दोनों ने अपना बना लिया कि नहीं हम इसमें ही करेंगे, आप घराना ख़त्म हो गया। छोटी छोटी चीज़ों से ज़रा ज़रा सी चीज़, इसलिए फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं कि अच्छी अच्छी बातों का मुज़ाकरा हो, अच्छी अच्छी बातों का मुज़ाकरा हो। फरमाया ये एक हदीस का टुकड़ा है और मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माँ को बच्चे की पैदाइश से पहले दर्द शुरू होता है तो उनकी आँखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने ऐसा सामान छुपा रखा है कि ज़मीन और आसमान के रहने वालों को उसकी खबर नहीं कि कितना अजर व सवाब मिलेगा। जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चा दूध पीता है, तो एक घूंट दूध पीने पर एक नेकी मिलती है, हर बार दूध के एक एक घूंट पर नेकी मिलती है, और बच्चे की वजह से रात में जागना पड़े तो 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और शुरू के हमल के ज़माने से बच्चे की पैदाइश तक और उसके बाद फिर दूध छुड़ाने तक माँ को ऐसा दर्जा मिलता है जैसा इस्लाम की हिफाजत करने वाले मुजाहिद को मिलता है, और अगर इस दरमियान में इंतकाल हो जाए तो शहादत का दर्जा मिलता है। मर्दों के बड़े बड़े काम जो बाहर जाकर करते हैं, कोई जमात में जा रहा है, कोई सदक़ात खैरात कर रहा है, मस्जिदों को जा रहा है, हज पे उमरे करके आ रहा है, पूरी दुनिया में जाके तबलीग कर रहा है, तो ख़वातीन को घरों में रहते हुए उनके सारे कामों का सवाब मिल जाता है। तो मर्द जितना ज्यादा जाएंगे और बाहर काम करेंगे, खवातीन को बैठे बैठे वो सवाब मिल रहा है, और अपने जिक्र अस्कार तिलावत खिदमत उसका सवाब अलग, डबल सवाब। और जन्नत में खवातीन को मर्दों से पहले भेज दिया जाएगा कि जाओ देखो जन्नत की खूबसूरती, और देखो अभी मर्द अभी आएंगे, अभी आने वाले, पहले भेज दिया जाएगा। इतनी बड़ी शान बयान की, इतनी बड़ी शान बयान की। अब हजरत ने यहाँ पर कुछ नसीहतें लिखी हैं भाई बहनों के लिए, और ये एक ऐसे आदमी की नसीहत है, हजरत शेख मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा, बहुत बड़े औलिया अल्लाह, और 100 साल की उम्र पाई, तो ये जितने लोग बैठे हुए हैं सब तो उनके पड़ पोते बच्चियों के बराबर हैं, इतने बड़े नाना जान नसीहत फरमा रहे। फरमाते हैं कि शौहर के साथ मोहब्बत रखना, हर जायज़ काम में कहना मानना, उससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, दुनिया में इज्जत और नेकनामी होती है, और लड़ाई झगड़ा रखना, उससे शैतान खुश होता है, जो सबसे बड़ा जहरीला सांप इंसान का दुश्मन है, और ज़िंदगी वबाले जान हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बर्ताव का यानी ट्रीटमेंट का तरीका लिखा जाता है। हजरत ने फरमाया, शौहर और बीवी का ऐसा रिश्ता है कि सारी उम्र उसी में काटनी पड़ती है, अगर मोहब्बत से रहे तो इज्जत और राहत की चीज़ है, कोई फ़र्क आया तो बड़ी मुसीबत है। तो याद रखिए कि अपने मर्द के साथ खाली मोहब्बत काफ़ी नहीं, उसके मर्तबे का, उसके स्टेटस का, पोजीशन का ख्याल रखिए, उठने बैठने में, बातचीत करने में उनका अदब करना ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी हंसी मजाक करते हों, उनकी आमदनी के मुवाफिक खर्च करिए, अगर कोई बात मर्जी के खिलाफ हो तो भी सब्र कीजिए और खुशी जाहिर कीजिए, ज़्यादा खर्च से बचिए, और जो कुछ मिले अपना घर समझकर जो कुछ मिले उसमें गुजारा कीजिए, किसी बात में ज़िद ना कीजिए और गुस्से में आकर ज़िद ना कीजिए, और किसी और शौहर को किसी बात पर गुस्सा आ गया तो ऐसी बात ना कहिए कि गुस्सा और बढ़े, अगर नाराज़ हो गए तो आप आजिज़ी से अपना कसूर माफ़ करा लीजिए, चाहे आपका कसूर हो या ना हो, झूठ मूठ कसूर माफ़ करा लिए, घर की चीज़ें सलीके से रखिए, और झूठ ना बोलिए, और कोई बुरा भला कहे तो जवाब मत दीजिए। आप देखेंगी कि गुस्सा उतरने के बाद मियाँ खुद शर्मिंदा होगा, खुद शर्मिंदा होगा, आके माफ़ी मांगेगी। और इस आखिर में हजरत ने लिखा कि अपने आदमी को अपने बस में करने की तदबीर ये है कि कहा माना जाए और जिस तरह वो चलाए उस तरह चलें, फिर उनकी जान माल सब आपके वास्ते, और उनके साथ जबान चलाना या मुकाबला करना या बराबरी करना बड़ी गलती है। भला ख्याल कीजिए कि आपका बाप क्या आपके बराबर हो सकता है। फिर हजरत ने लिखा कि शौहर का मर्तबा बाप से भी ज़्यादा है, शौहर का मर्तबा बाप से भी ज़्यादा है, इतनी रिस्पेक्ट चाहिए। अब यह तो हुए बहनों को नसीहत, एक नसीहत भाइयों को है कि अपने घर आए तो समझे कि मैं अब अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा हूँ, और दरवाजे पर से अच्छी नीयतें करते हुए आए, और कैसी तैयारी करके आए भाई, कि ऐ अल्लाह मैं आपकी रजा और खुशी के लिए अपने घर जाता हूँ, और या अल्लाह घर में दाखिल होने को खैर व बरकत का जरिया बना दीजिए, और मेरे और घर वालों के लिए नेकियां कमाने का जरिया बना दीजिए। जो बिस्मिल्लाह से दाखिल हुआ, सलाम करके, दुआ करके दाखिल हुआ, और उसके साथ में अगर किसी रिस्क की बरकत चाहिए तो सूरह इखलास, दरूद शरीफ, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, इनमें से जो मौका मिल जाए पढ़ता हुआ दाखिल हुआ घर के अंदर, और नियत की कि मैं ऐसी जगह आ रहा हूँ कि जहाँ मुझे शैतान और उसके लश्कर से हिफाजत हो जाएगी। शैतान गली में घूमता रहता है, अब दरवाजे तक रह जाएगा, अंदर नहीं आ सकता, बिस्मिल्लाह करके जाऊँगा शैतान रुक जाएगा, और मेरा जिस्म, ये बॉडी, ये अल्लाह की अमानत है, सरकारी मशीन है, मैं इसको आराम पहुंचाने के लिए थोड़ी देर को घर जाता हूँ, और घर वालों की खिदमत करूँगा, काम काज उनमें हाथ बटाऊँगा, वालदैन होंगे तो उनको क्या ज्यारत करूँगा, और उनको नज़र रहमत से देखूँगा तो मुझे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। घर में क्या आया नहीं, जन्नत हो गई, घर में आ रहा है, बहुत बड़ा वाकया है। कोई बुलाते हैं जैसे दावत में आदमी कैसे ज़रा धूम से जाता है, अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ ये सब सोच रहा है, मैं घर जा रहा हूँ भाई, बड़ी बड़ी बात है। और अपने घर वालों को मोहब्बत की नज़र से देखने के लिए, जो आदमी घर में दाखिल हो और घर वालों को मोहब्बत की नज़र से देखे, और घर वाले अपने शोहर को मोहब्बत की नज़र से देखें, तो अल्लाह ताला दोनों को मोहब्बत की नज़र से देखें, रहमतें नाजिल होती, बच्चों को प्यार करने की नीयत, और घर वालों को दीन की बातें फजाइल सिखाने की नीयत। अब जब दरवाज़ा खुला तो जाए बच्चे दौड़ कर आएंगे, अब्बा जी आ गए, सलाम किया, बच्चों को प्यार हुआ, सलाम दुआ हुई, सारी थकन दूर हो गई अब्बा जी की, और अंदर घर वाले तैयार होकर बैठे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया, हाल चाल पूछी और खैरियत पूछी। अब असल में तो हाल ये था कि घर वाले पूरा दिन के काम काज से थके हुए हैं, परेशानी, बच्चे, काम काज, बावर्ची खाना, धुआं, बदबू, तो और शौहर जो है वो भी थके हुए हैं, गाड़ी चलाना, दफ्तर में पूरा दिन कस्टमर से बात करना, मसले सुलझाना, एक कंप्यूटर को 10 घंटे तक देख रहे, तो एक दोनों ही परेशान है असल में। लेकिन क्या है, अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से मुस्कुरा के एक दूसरे से मिलते, जैसे कि बिल्कुल फ्रेश, कोई मसला ही नहीं। तो ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। घर में, दफ्तर में कोई हालात खराब है, कोई मैनेजर साहब ने कुछ कह दिया, घर में बात नहीं लाना, उस वक्त नहीं कहना। घर में कोई चीज़ टूट गई, अभी कोई तज़किरा नहीं करना, अभी तो आए हैं, थोड़ी सी थकन दूर हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में मुस्कुराते हुए दाखिल होते, मिसवाक करते, ताकि कोई मुंह से कोई बू भी ना आए, मिसवाक करते, मुस्कुराते हुए दाखिल होते। और अम्मा आयशा रदी अल्लाह ने फरमाती कि ये मुस्कुराहट तो हमारा हक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर कुफार तंग कर रहे हैं, जंगे हो रही हैं, दिन भर दावा ट्रिप्स हैं, परेशानी है, और कोई चीज़ है, अहवाल है, फरिश्ते आए, कोई वही नाजिल हो रही है, पूरी दुनिया के हालात सामने हैं। घर में आए तो मुस्कुराते आ रहे हैं जैसे कोई मसला ही नहीं। अम्मा कहती हैं कि ये तो हमारा हक है, ये मुस्कुराहट तो हमारा हक है, बाहर की बातें बाहर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत पाक से कुछ सबक पढ़ा जाएगा कि घर में किस तरह रहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में किस तरह रहते थे और किस तरह खिदमत के उनके वाकयात। सलाम करने में पहल फरमाते, अगर हर बार मिलना होता दिन में कई बार, तो हर बार सलाम करने में पहल फरमाते, मिलने जुलने में सादगी से मिलते, किसी से कोई काम खराब हो जाता कभी नाराज नहीं होते। अनस रदी अल्लाह ने 10 साल खिदमत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, छोटे बच्चे थे, गलती कर देते थे, कोई चीज़ भूल गए, नहीं भूल गए, कभी उनको नहीं कहा कि ये काम क्यों किया या ये काम क्यों नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा 10 साल तक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कोई काम खराब हो जाता तो नाराज नहीं होते, अपने घोड़े को दाना घास वगैरह खुद ही डाल देते, अपने हाथों से अपने कपड़े खुद सी लेते, पेवन भी लगा लेते, कपड़े फिक्स कर लिए खुद, ना घर में दिए ना दर्जी को दिए, खुद ही ठीक कर लिए। घर के कामों में खादिमों के साथ शरीक हो जाते, घर में झाड़ू देते और चिराग खुद जलाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, दावा वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में तबलीग का काम होना है, घर में झाड़ू खुद देते। सहाबा कराम में इस तरह घुल मिलकर बेतकल्लुफी से बैठते कि अगर कोई अजनबी आता, स्ट्रेंजर, तो उसको पता नहीं चलता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। मदीने शरीफ हिजरत करके गए तो मदीने वालों ने समझा कि अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे आके मिलने लगे, वो भी मिलने लगे, कोई बात नहीं, मिलो मिलो, सबसे मुसाफा करो। जब धूप हुई तो उन्होंने उठ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक चादर से साया किया, तो लोगों को मालूम हुआ कि अरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये। सहाबा में इस तरह बैठते कि किसी को पता ना चलता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। सहाबा को उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट की वजह से नाम से नहीं बुलाते, बल्कि उनकी कुनियत से बुलाते, अबू फला, अबू फला, इब्ने फला, किसी को उसके अपने डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाते, उसकी लंबा सा उसका नाम रखते, उससे पुकारते। सहाबा या दूसरे लोगों में से कोई आपको पुकारता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबैक करके जवाब देते, हाजिर हूँ मैं, क्या बात है, लबैक कह के जवाब देते। बच्चों के पास से गुजरते तो उनको सलाम करते, उनसे प्यार करते, मुसलमानों की ऐब पोशी फरमाते, परेशानी और बीमारी में दोस्तों की मदद फरमाते, कोई नौकर बीमार पड़ जाता गुलाम तो उसका काम खुद करते, हम तुम्हारा काम करेंगे आज, और बाजार से सौदा वगैरह खुद ले आते, बाजार से सौदा वगैरह खुद ले आते, और दावत कबूल फरमाते, तोहफा भी ले लेते, अगरचा एक घूंट दूध या चंद खजूरें ही क्यों ना हो, जो खाने को पेश किया जाता अपनी खुशी से खा लेते और खाने में कोई ऐब ना निकालते, खाने में कोई ऐब ना निकालते, और जो कपड़ा मिल जाता पहन लेते, कभी कंबल, कभी चादर, कभी खद्दर, कभी सफ़ेद कपड़ा, जो सवारी मिल जाती उसको कबूल फरमा लेते, घोड़े पर भी सवार हो गए, ऊँट पर भी सवार हो गए, गधे पर भी सवार हो गए, पैदल भी चल लिए, नंगे पाँव भी चल लिए, कोई मसला ही नहीं, दुनिया की किस चीज़ का कोई मसला ही नहीं, जो मिल गया खा लिया, जो सवारी मिल गई सवार हो गए, अपने हर वक्त जिक्र अल्लाह में, उम्मत की खिदमत में, इबादत में, तालीम में, दावत में लगे हुए। कोई आदमी ज़रूरत से आपके पास आता, आप नमाज में मशगूल होते तो जल्दी से अपनी रिकत पूरी करते, उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते, हाँ भाई क्या ज़रूरत है। कोई कोई मिलने वाला आता तो उसकी रिस्पेक्ट करते और अपना तकिया तक निकाल के उसको दे देते कि लो बैठ। ये सब बातें, कोई आपके पास आता तो अपनी चादर उसके लिए बिछा देते कि लो बैठ जाओ, अपनी चादर बिछा देते किस पे बैठ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे अखलाक और खिदमत का जज्बा, और उसके बाद फिर उम्मत में भी आया। और आजकल आप जो देखते हैं कि बाद गैरों के यहाँ इतनी तरक्की है और चीज़ें हैं और दुनिया की नेमतें हैं, तो ये भी देखिए कि खिदमत में ये लोग कितना आगे हैं। दुकानदार 8 बजे दुकान बंद करना था, दिन भर सैकड़ों कस्टमर हैं, हर एक से अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है। एंड जब दुकान बंद करना था, एक आदमी और आ गया। अब जिसकी अपनी दुकान होगी तो वो कहेगा नहीं कि भाई कल आना, टाइम पूरा हो गया, फौरन दोबारा खोल देगा, आइए साहब आप ही के इंतजार में थे। अब वो नया आया, उसने 15 मिनट आधा घंटा लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कस्टमर सर्विस है, खुश। यहाँ का वाकया है कि डॉक्टर साहबा, कोई लेडी डॉक्टर, अपना उनका क्लिनिक है, दिन भर सुबह भी ऑपरेशन, शाम भी, और 8 बजे रात तक क्लिनिक किया। और कोई मरीज आ गई अस्पताल में, उसी दिन तकलीफ है, इमरजेंसी है, ज़रूरत है, अब डॉक्टर कह सकते नहीं कि भाई कल आना, अभी एक हफ्ता रहो अस्पताल में, देखा जाएगा, कुछ सरकारी है, बाद में देखेंगे। 8 बजे अपना क्लिनिक ख़त्म किया, अस्पताल आई, 9 बजे ऑपरेशन को ले गई, 11 बजे तक ऑपरेशन किया, ठीक हो जाए, 12 बजे अपने घर गई, उनके बच्चे हैं, चीज़ें हैं, लेकिन इमरजेंसी आ गई, मखलूक की खिदमत में लगे, और कोई उनके सिवा और कोई लेडी डॉक्टर मिल नहीं रहा उस स्पेशलिटी का। तो 12 बजे रात को घर गई, वहाँ से फ़ोन करके फार्मेसी में बता रहे हैं कि ये जो है इस वक्त ये इनकी दवा ये ले ली जाए और ये पहुँचा दी जाए। इतना खिदमत करते लोग, उसमें अल्लाह ने बरकतें दी। सिर्फ दीन ईमान अगर मिल जाए तो ये लोग तो हमारे से सैकड़ों गुना अच्छे। अल्लाह पाक हिदायत दे। जहाज़ में कैप्टन है, एयर हॉस्टेस हैं, चीज़ें हैं, 15-15 घंटे जहाज़ उड़ाते हैं, बेचारे कहाँ कहीं होटल में ठहरे होंगे, फिर आए होंगे, 5 मुसाफिर 3 घंटे पहले आता है, जहाज़ का क्रू 4-5 घंटे पहले आके बैठा होता है, और पूरे रास्ता खिदमत की, मुसाफिर बड़ी सी सीट में सो रहे हैं और वो छोटी छोटी सी सीट में कहीं, और उस वक्त खाना तैयार कर रहे हैं और घूम रहे हैं, 15 घंटे खिदमत करते हैं ऐसे। और जब मुसाफिर उतरते हैं 400 आदमी, तो हर एक को सलाम करते हैं, और ऐसा स्माइलिंग फेस कि 15 घंटे जागने के बाद आपका ऐसा फेस हो नहीं सकता। खिदमत का जज्बा, तो अप्रिशिएट खिदमत का जज्बा देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि ये लोग जो है कोई सुपर नेचुरल तो नहीं है, कहाँ से आ गए। एक मरतबा सहाबियात के ज़माने में सहाबियात आई, और उन्होंने अंसार की औरतों ने आके कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान पाक में बस मर्दों का जिक्र करते रहते हैं, हमारा तो जिक्र आता ही नहीं, हमारा जिक्र आता ही नहीं, मर्दों सारे अहकाम या अय्युहल लज़ीन आमनू, सारे मर्दों को खिताब है पूरे, तो हमारा तो जिक्र आया नहीं, तो क्या हुआ। तो अभी वो खातून उन्हें सवाल करके वापस नहीं गई थी कि जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, जिब्राइल भाग कर आ गए, अल्लाह के दरबार से वही नाजिल हुई, सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई, सूरह अहज़ाब की आयत 35, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबियात वल वस साबिरात। इस तरह मुसलमान मर्दों और औरतों की 10 खूबियाँ अल्लाह ने गिनाई, और उसमें हर एक का नाम लिया, मर्द और औरतें, मर्द और औरतें, मर्द और औरतें, उसका तर्जुमा है उस आयत का, यानी ये इक्वलिटी या कहीं पर बताना हो कि इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम दिया है, तो ये आयत और उसका तर्जुमा गैर मुस्लिम को दे दीजिए, दावा हो जाएगा। फरमाया कि बेशक फरमा बरदार मर्द हों या फरमा बरदार औरतें, मोमिन मर्द हों या मोमिन औरतें, इबादत गुजार मर्द हों या इबादत गुजार औरतें, सच्चे मर्द हों या सच्ची औरतें, सब्र करने वाले मर्द हों या सब्र करने वाली औरतें, दिल से झुकने वाले मर्द हों या दिल से झुकने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द हों या सदका करने वाली औरतें, रोज़ेदार मर्द हों या रोज़ेदार औरतें, अपनी शर्म की जगह की हिफाजत करने वाले मर्द हों या औरतें, और अल्लाह का जिक्र खूब करने वाले मर्द हों या अल्लाह का जिक्र खूब करने वाली औरतें, उन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और शानदार अजर तैयार कर रखा है। ऐसे उलमा फरमाते हैं कि ये 10 सिफात बयान की कि ये ले आओ, 10 अंगूठियां पहनाई कि ये पहन लो, सारी दुनिया आखरत की जो भलाइयाँ मिल जाएंगी, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। और इसमें एक वाकया बयान किया जाता है, जो एक बुज़ुर्ग हाशिम रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में थे, सफ़र में खाना ख़त्म हो गया, कहीं चल रहे थे, तो पहले ज़माने में मेहमानों का बहुत इकराम होता था, जहाँ गए वो मेहमान का हक होता है, तो एक खेमे के करीब गए, उनको भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने जाकर खेमे वालों को कहा, कोई पर्दे में कोई बैठे होंगे खातून, उन्होंने कहा कि बहन भूख लगी है, खाना मिल जाएगा। तो अंदर से जवाब आया कि हम क्या मुसाफिर के लिए खाना पकाने के लिए यहाँ बैठे, हम नहीं देते, जाओ अपना रास्ता लो। वो बुजुर्ग कहने लगे कि ऐसी भूख लग रही थी कि उठ नहीं सका, तो मैंने कहा चलो ठीक है चले जाते हैं। उतने में उस औरत का शौहर आ गया, उसने देखकर कहा मरहबा, कौन आया? उन्होंने कहा मुसाफिर हूँ। उसने पूछा मियाँ खाना खाया? मैंने कहा नहीं खाया। उन्होंने कहा भाई तुमने खाना नहीं खिलाया? तो घर वालों ने कहा हम कोई मुसाफिर हों, खिलाने को थोड़ी बैठे, अब नहीं खिलाते। तो मियाँ ने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, और उन्होंने बकरी ज़बह की जाकर खुद, और उसको काटा, गोश्त पकाया, पकाया खिलाया, मेहमान के साथ माजरत की, उनको आगे रवाना किया। अच्छा भाई जाओ। चलते चलते ये मुसाफिर आगे गए अगली मंजिल पर भी, कभी बाद में आगे खाना ख़त्म हो गया तो एक खेमा आया, उन्होंने वहाँ जाके सवाल किया, उन्होंने कहा कि बहन कोई मुसाफिर है, कोई खाना मिल जाएगा? अब यहाँ पर बहन ने कहा कि मरहबा मरहबा, अल्लाह की रहमत आ गई, जब सारे खादिम नौकर सब दौड़ो, खाना जमा करो, सफाई करो, भाई मेहमान आ गया, बड़ी बात है, अल्लाह की रहमत है। और उन्होंने कहा माशाल्लाह मेहमान आ गया, जल्दी से बकरी ज़बह की पकाई और उनको भेजा। तो उस पर उनके मियाँ आ गए, तो मियाँ ने आके पूछा कि कौन है तू? तो उसने कहा भाई मैं मेहमान हूँ। तो मियाँ ने कहा कि आपको रोटी किसने दी? तो उसने कहा कि भाई आपके घर वालों ने दी। तो जाके लड़ने लगे घर में कि तूने क्यों नहीं मेहमान को खिलाया। उन्हें कहा तुमको शर्म नहीं आती, मेहमानों को खिलाकर मेरा घर खाली कर देगी। तो इन बुजुर्ग की हंसी निकल गई, इन्होंने जोर से हंसे और कहने लगे कि मैंने पीछे वाले बस्ती में इसका उल्टा देखा था। तो वो कहने लगे कि जानते हो ऐसा क्यों था? वो मेरी बहन है और ये उसकी बहन है। वो वाली जो औरत थी वो इसकी बहन है, और ये वाली जो औरत है वो उसकी बहन थी। नेक घराने के एक लोग थे और एक दूसरी तरह। आयशा रदी अल्लाह अन्हा, उनका रोजा था, 1 लाख दिरहम हदीये में आए, 1 लाख कॉइन, सिल्वर कॉइन। और उन्होंने कहा अपने नौकरानी को, उन्होंने दिया कि इस पर एक थाल में रखो, उसके ऊपर कपड़ा रखो, और जाके मदीने में फकीरों में आवाज लगा दो, जिसको क्या चाहिए भाई आ जाओ अल्लाह के नाम। फकीर आ गए, मुट्ठियां भर भर के देती जा रही थीं, और घर में फाका है, घर में एक दाना भी नहीं है। असर तक सारा थाल खाली कर दिया। कनीज कहने लगी कि अम्मा जान, 1 दिरहम 1 कॉइन आप रख लेती तो मैं आज इसके लिए आपका गोश्त पका देती, गोश्त खा लेती, आपका रोजा था, घर में कुछ है ही नहीं। फरमाया कि बेटी तुमने याद नहीं दिलाया, अगर पहले याद दिलाती तो हम 1 कॉइन रख लेते, 1 कॉइन रख लेते। ऐसा हाल था अल्लाह वालों का, कोई चीज आया तो दूसरों की खिदमत, दूसरों की खिदमत। राबिया बसरी बहुत बड़ी वलिया गुजरी हैं, उनका इंतकाल हो गया, तो ख्वाब में उनके खादमा ने उनको देखा, पूछा अम्मा आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरे पास कब्र में फरिश्ते आए, मुनकिर नकीर, और मुझसे कहने लगे कि मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? सवाल हुआ फरिश्तों को। तो मैंने उनसे कहा कि सारी जिंदगी मैं जिस रब को नहीं भूली, 4 हाथ नीचे जमीन में आके क्या भूल जाऊंगी? ऐसा जवाब दिया। ये नहीं कहा कि मेरा रब अल्लाह है, कहा कि मैं सारी जिंदगी भूली नहीं, अल्लाह के जिक्र इबादत में रहती थी, अब 4 हाथ जमीन के नीचे आई भूल जाऊंगी क्या? तो फरिश्तों ने कहा कि छोड़ो भाई, इसका क्या हिसाब लेना, नहीं लेते। खादमा ने ख्वाब में पूछा कि अम्मा जी आपका पुराना सा आप कपड़ा पहनती थी, गुदड़ी एक लंबा सा जुब्बा था, वो कहाँ गया जिसमें आपको कफन दिया गया था? उन्होंने फरमाया कि, और आपको एक बहुत आलीशान लिबास जन्नत का पहनाया गया है, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने संभाल करके वो गुदड़ी पुराना कपड़ा रख दिया कि क़यामत के दिन मेरी नेकियों में उसको भी तोला जाएगा, उसका भी वजन होगा। ऐसा राबिया बसरिया बहुत अल्लाह की वली थी बड़ी। आज का सबक थोड़ा सा कुछ चंद मिनट ऊपर हो जाएगा, हम चाहते थे कि ये सारा एक ही नशिस्त में हो जाए, तो लेकिन अल्लाह ताला आप सब लोगों को बरकत दे, और ये चीज़ें जो पढ़ी जा रही हैं हमारे बच्चों में, आइंदा नस्लों में, और उम्मत की माओं में, बहनों में और भाइयों में आ जाएँ, तो एक बहुत वक्त का हिस्सा फारिग हो जाएगा दीन के काम, और आपको जिक्र अस्कार के लिए और अल्लाह से दुआओं करने के लिए आपका ताल्लुक बढ़ जाएगा। قرآن مجید نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. مومن لوگ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. حدیث میں آیا کہ معاف کر دینے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے. قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس انسان کا اللہ کے ذمے حق ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے. ایسا کوئی ہے؟ لوگ پوچھیں گے بھائی ایسا کون ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے؟ تو فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے واسطے لوگوں کو معاف کر دیتے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے ایک کان میں گالی دے، بری بات کہے، اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں اسی وقت اس کو معاف کر دوں. جاؤ. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان کو غیبت کر رہا تھا، ان کی غیبت کر رہا تھا، برا بھلا بری باتیں سنا رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اے دوست، اگر تم سچے ہو، تو یعنی میرے غلطی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے واقعی، اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے بخش دے، اور اگر تم جھوٹے ہو، غلط بات کہہ رہے ہو، تو اللہ تم کو بخش دے. معاملہ ختم، قصہ ختم. غیبت کر رہا تھا، برائی، کہنے لگا اگر تم سچی بات کہہ رہے ہو اور میں غلط ہوں، جھوٹا ہوں، تو اللہ مجھ کو بخش دے، میں معافی مانگتا ہوں، اور اگر تم غلط بات کر رہے ہو تو اللہ تم کو بخش دے. دونوں طرح سے قصہ ختم. ایک مرتبہ ایک اور آدمی نے آپ کی غیبت کی تو انہوں نے کہا میرے دوست، تم کو جتنا میرے عیبوں اور ڈیفیکٹ کا معلوم ہے اس سے زیادہ اور عیب ایسے ہیں میرے اندر جس کا تم کو ابھی معلوم ہی نہیں، تم کو معلوم ہی نہیں. ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ گیا. امام صاحب پڑھا رہے ہیں پوری امت کے مسائل، فتاوا چیزیں، اتنا علمی کام، ہزاروں سال کا بادشاہتیں چلی ہیں ان کے فتاوا پہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کے کہنے لگا کہ آپ کی اماں بوڑھی ہیں، آپ اپنی اماں کی شادی مجھ سے کر دیں. آپ کی اماں بیوہ ہیں، بوڑھی ہیں، اماں کی شادی مجھ سے کر دیں. تنگ کرنے کے لیے ان کو آ کے امام صاحب کو ایسا کہہ رہا ہے ان کی مجلس میں. امام صاحب نے کوئی ناراض نہیں ہوئے، اور ایک جیسے ایک مفتی کہتا ہے سوال کا جواب، اس طرح انہوں نے جواب دیا. فرمائے لگے کہ میری والدہ عاقلہ اور بالغہ ہے، میری والدہ عاقلہ اور عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا. ایسا جواب دیا جیسے کوئی جسٹس کورٹ میں کہتا ہے، کوئی ایکسپریشن ایکسپریشن نہیں. میری والدہ جو ہیں وہ اڈلٹ ہیں، بڑی عمر کی ہیں، خود مالک ہیں، ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا. وہ آدمی وہاں سے رخصت ہو کے چلا، آگے جا کر گر پڑا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہیں پہ مر گیا. امام صاحب نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک آدمی کی جان لے لی. اللہ والوں کو ستانے کا ایسا نقصان، اللہ والوں کو ستانے کا ایسا نقصان ہوتا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ایک جگہ تقریر کرنے گئے تو ان کو ایک پرچہ ملا، کسی نے، حاسد نے، کسی ظالم نے بھیجا. اس میں لکھا کہ اشرف علی آپ کافر ہیں اور آپ جو ہے بدکاری کی اولاد ہیں، ذرا سنبھل کے بات کرنا. ایک آدمی 80 سال کی عمر پہ آئے، 1000 سے اوپر کتابیں لکھیں، پورا انڈیا ان کا احسان مند اور بہشتی زیور کتاب گھر گھر میں پڑھی جاتی ہے، پورے یعنی ون مین جماعت پورے انڈیا میں جا کے اپنے بیانات ہوتے، سینکڑوں لوگ سنتے، بڑے بڑے نواب آپ کے شاگرد و مرید، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں کافر ہیں. تو آپ نے وہ پڑھا پرچہ اور بڑی محبت سے جواب دیا کہ بھائی یہ پرچی آئی ہے اس میں یہ لکھا ہے، سارے مجمع کو پڑھ کے سنایا کہ میرے لیے یہ پرچی آئی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. پھر کہنے لگے کہ اگر میں کافر ہوں تو لو اب کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. پھر کہنے لگے کہ آپ کو جو ہے دوسری جو تہمت آپ نے لگائی اس کا جواب یہ ہے کہ اسی مجمع میں میرے اماں ابا کی نکاح کے گواہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو. اور تیسری بات سنبھل کر بات کرنے کی ہے تو حضرت کہنے لگے میں نہ تو چندہ مانگنے آیا ہوں نہ کوئی رشتہ مانگنے آیا ہوں، تو میں کیوں سنبھل کے بات کروں، میں تو حق بات ہی کروں. نہ تو چندہ مانگنے آیا ہوں اور نہ رشتہ مانگنے آیا ہوں، تو میں کیوں چپ چپا کے بات کروں، میں تو اچھے سے ہی بات کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کے مقام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الحمد للہ اللہم صلی اللہ محمد. دیکھیں یہ غصہ جو ہے یہ بعض دفعہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں, اگلا آدمی عزت نہیں کرتا, میری ویلو نہیں کرتا, تو غصہ آ جاتا ہے. بعض دفعہ صحت کی کمی کی وجہ سے آ جاتا ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے. یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر ایک آدمی کو غصہ آ گیا گھر میں تو دوسرا آدمی اس کو ایکسکیوز دے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ, کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. زندگی کی چند ساتھیں ہیں, یا تو نیکیوں کے پہاڑ لے لیں یا آدمی آگ کے انگارے لے لیں. شیطان کا حملہ ہر طرف سے ہوگا, اور اس کا علاج کیا ہے؟ شکر. اللہم لک الحمد لک شکر, اللہم لک الحمد لک شکر. دیکھیے دوسرے لوگ دوست پڑوس کے یہ لوگ, اگر کوئی ان میں لڑائی ہو جائے اور وہ چلے گئے تو وہ بعد میں مل جائیں گے یا ان جیسے دوسرے مل جائیں گے, لیکن اگر رشتہ دار ناراض ہو گئے تو وہ پھر بعد میں نہیں ملتے. رشتے داروں میں اگر ٹوٹ ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں نہیں ملتے, عید بقرعید پہ بھی نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ مل جائے. اور مخلوق سے کوئی امید نہ ہو, نہ بدلے پر نظر ہو, ورنہ اس کو رنج ہوگا, غم ہوگا. دوسرے پر ہم نے احسان کیا, سالہ سال اچھا کام کیا, اللہ کے لیے کیا, یہ کوئی امید مت رکھیے کہ کوئی میرے کام آئے گا. ساری مخلوق ایسی عاجز ہے جیسا اینٹ پتھر, کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ دینے والے, اللہ دینے والے. جھگڑا چھوڑنے پر جنت کا محل ملے گا. اور یہ چیز یاد رکھیے کہ گھر میں اگر کبھی ہو گیا جھگڑا, آپ کا غصہ آپ کو کھا جائے گا, صحت خراب ہو جائے گی. آپ کا غصہ آپ کو کھا جائے گا, بہت مسئلہ ہے, بہت مسئلہ ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ کے کام, یہ سب کو یہ درخواست ہے, میں خود کو بھی, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, ہمارے کام جب تک کسی دوسرے کی مرضی کے تابع نہ ہو جائیں, اسی کے لیے شیخ ہوتا ہے. شیخ وظیفے بتانے یا تسبیح کے لیے نہیں ہوتا, پوچھ پوچھ کے زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے. جب تک ہمارے کام کسی دوسرے آدمی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے, جب تک اصلاح نہیں ہوگی. یہ دفتروں کا, کمپنیوں کا, کارخانوں کا نظام کیسے چلتا ہے؟ مینیجر ہے, اس کے اوپر ایک مینیجر ہے, سب اس کے ساتھ چلتے ہیں. اگر آدمی اپنی مرضی سے کر لے کام کہ آج میں یہ کروں گا کل وہ کروں گا, کوئی کمپنی نہیں چلتی, سب ٹھپ ہو جاتے. اسی وقت پروڈکٹیویٹی ہوگی, اچھی چیز ہوگی, جب آدمی کسی کو فالو کرے گا, کسی کو فالو کرے گا. مومن کی مثال پھلدار درخت کی ہے. لوگ پتھر ماریں پتھر ماریں تو درخت کیا کرے گا؟ پھل دے گا. یہ لو بھائی فروٹ, یہ لو بھائی فروٹ. مومن کی مثال پھلدار درخت کی ہے. سب لوگ ایک طبیعت کے نہیں ہوتے. ایک ہی گھر میں دو بھائی بہن, ایک ماں باپ کی اولاد, ان کی پرسنالٹی بالکل الگ ہوتی, بالکل الگ. کیا چیز سے کیا خوش ہوتا ہے, کیا چیز سے کیا خوش ہوتا ہے, الگ الگ ہوتی. تو جہاں پر کبھی برتن ہو اور ٹکرائے تو آواز ہوتی ہے, تو اس کو اگنور کر دیں. ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی اس لیے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی کینہ یا کھوٹ نہیں رکھتے تھے. کچھ یعنی درخواستیں ہمارے بہنوں کی خدمت میں, اور کچھ درخواستیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہ یہ جو ہے ہمارا گھر کس طرح جنت کا نمونہ بن جائے, گھر جو ہے وہ جنت کے نمونہ بن جائے. تو پہلی جو ہے وہ بھائیوں کی خدمت میں کہ اور بہنوں کی خدمت میں پہلے کہ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے, مرد عورتوں پر حاکم ہے, اللہ نے فرمایا. اور حدیث شریف میں آیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حکم دیتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے. ایسا آیا, اتنا بڑا موقع. تو گھر والے یہ سوچیں, اب یہ سب کو یعنی پوری امت کو خطاب ہے, ہمیں سب کو, گھر والے یہ سوچیں کہ یہ بیچارے, ان کی نیند نہیں ہوئی, تھکن سے چور ہیں, پھر بھی ہر روز صبح سے شام تک کام کے لیے بھاگتا ہے, بس میں جا رہا ہے, گاڑی میں, ایک مشقت ہے صبح سے شام تک پریشانی, اور باہر کے معاشروں کے سارے فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے اور فتنوں کو گھر میں آنے سے روکتا ہے. گھر کا محافظ ہے, ان کی وجہ سے کوئی غیر آدمی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. تو ایک فہرست بنائے آدمی گھر میں, ٹاپ 10 چیزیں جس سے میرا میاں گھر والا خوش ہوتا ہے. ایک بہت ضروری چیز ہے جو یہاں مغربی معاشرے میں ہے, جو ہماری بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے, باہر کی دنیا میں اتنے فتنے ہیں, سڑک میں, بازار میں, دفتر میں, دکان میں, ہر جگہ سینکڑوں خوبصورت مسکراتے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں, انتہائی خوبصورت اور انتہائی پولائٹ. یعنی ایسا کہیں دنیا میں نہیں ہوگا کہ دونوں چیزیں, بات چیت بھی بہت بااخلاق, کوئی ریسپشنسٹ ہے یا کوئی چیز ہے, پروفیشنل اسمائل, حالانکہ دین ایمان نہیں ہے لیکن نرمی ہے, خیرخواہی ہے. اور مردوں عورتوں سب کو حکم ہے نظریں نیچی رکھیں, نہ کسی غیر محرم کے قریب ہوں، نہ بے تکلفی سے کریں، پھر ماحول میں بے پردگی اتنی ہے کہ آنکھوں کو کہیں پناہ نہیں، شیطانی خیالات ایک دم سے آدمی کے دماغ پر آ سکتے ہیں۔ یہ بیچارہ گھر کا مرد جو جاتا ہے دن بھر، ایک پوری سٹرگل ہے اس کی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی نظر بچاتا ہے، دن بھر اپنی نظر بچاتا ہے، ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، اور اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، اور نفس اور شیطان سے پورا دن کشتی لڑتا رہتا ہے۔ تو جب شام کو گھر پر آئے تو اپنے گھر والوں کی ایک مسکراہٹ اس کا سارا دکھ دور کر دے۔ یہ گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی مشکل سے مقابلہ کر کے آیا ہے، سینکڑوں جگہ سے نظر بچا کے آ رہا ہے۔ تو جو آدمی باہر کے فتنے سے نظر بچا لے گا، اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی اور اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ اگر کوئی کمی ہو، اونچ نیچ ہو، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ گئے تو اللہ پاک روحانی، جسمانی، دلوں کی گندگی سب پاک صاف کر دیں گے، اور جنت میں ایک بازار ہے جہاں آدمی کیسی شکل بنا لے، بادشاہ کا شکل ہو جائے، شہزادے کی شکل ہو جائے، شہزادی کی شکل، ملکہ کی شکل ہو جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا جیسا چاہے ویسا ہو جائے۔ تو یہاں کی زندگی تو بہت تھوڑی سی، جو ہے اللہ کی عطا ہے، جو ہے اللہ کی عطا ہے۔ اب ہمارے مردوں کو، بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے عورتوں کے فضائل، کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے ساتھ خوش اچھے طریقے سے رہو، گھر میں اچھے طریقے سے رہو، حکم فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا، ایک جگہ سورہ رحمان میں آیت ہے حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، اس میں تو آخرت کا ذکر ہے کہ حوریں خیام اپنے اپنے خیموں میں ہیں، رکی ہوئی ہیں۔ تو علماء کرام وہاں سے فرماتے ہیں کہ دیندار عورتوں کی اصل خوبی گھر میں رکے رہنا ہے، اصل خوبی عورتوں میں کیا ہے، گھر میں ہے۔ اور فائدہ کیا ہے، انہوں نے نامحرم کو نہیں دیکھا، ان کے دل صاف اور نظریں پاکیزہ ہیں، ان کے دلوں میں غیروں کے وسوسے نہیں آتے۔ یہ سب چیزیں شوہروں کو سوچنا چاہیے۔ شوہر مہینوں کے لیے گیا کہیں تو واپس آ کر بیوی کو گھر میں وہیں پائے گا جہاں پر چھوڑ کے گیا تھا۔ اور نکاح کا رشتہ کتنا مقدس، پاکیزہ اور برکتوں والا ہے۔ آپ کو زندگی کے 20 سال معلوم ہی نہیں تھا کہ کسی سے شادی ہوگی، جہاں شادی ہونے والی تھی جب وہ چھوٹی بچی تھیں تو والدین نے ان کا اتنا خیال کیا، پڑھایا لکھایا، پرورش کی، اور سارے آپ کے فائدے کے لیے، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اور جن کو دیکھنا یا ان کی بات سننا بھی منع تھا، ان کا نام بھی نہیں جانتے تھے، جنت کی حور کی ایک جھلک دنیا میں آپ کے گھر بھیج دی، نہ بھیج دی بس، اس کے علاوہ اب ان سے ہنسنا بولنا، مذاق تفریح جائز بھی ہو گیا، اور اللہ کے لیے اچھی نیت سے کرنا عبادت ہو گیا، ثواب مل رہا۔ تو بھائی اور کیا چاہیے؟ تو کوئی مشکل، شکایت، زمانے کے حالات، کوئی چیز، اس کو آدمی ایک مسکراہٹ کے پیچھے دبا دے، اس کو ایک مسکراہٹ کے پیچھے دبا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دونوں کو چاہیے گھروں میں کہ ایک دوسرے کا خوب خیال کریں، ایک دوسرے کا خوب خیال کریں۔ ایک جگہ ایسا ہوا، یہ ریئل کوشچن ہے، یعنی یہ حلقے کا مقصد یہ تھا کہ بعض دفعہ امت میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ایک بیوی غصے میں آ گئیں اور میاں سے لڑنے لگیں، اور بار بار کہتی تھیں کہ مجھ کو چھوڑ دو۔ وہ بیچارہ پریشان۔ تو بیوی جو ہے بولتے 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 آخر اس سے کہلوا لیا جو بات نہیں کہنی چاہیے، جو دو لفظ کہلوا لیے جو نہیں کہنی چاہیے تھے۔ اب جب ہو گیا یہ تو بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب وہ آ کر کے مسئلہ فتویٰ پوچھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میرے میاں کی وہ کہتے وقت نیت نہیں تھی، اصل میں زور دے کے کہلوایا اور کہہ رہی ہیں کہ میرے میاں کی یہ کہنے کی نیت نہیں تھی، تو اب کیا ہوگا؟ بھائی یہ جو ہے نکاح اور علیحدگی والے الفاظ، یہ مذاق میں بھی نہیں بولنے چاہیے، اس وجہ سے ہم وہ الفاظ استعمال ہی نہیں کرتے یہاں پہ، نہ غصے میں نہ مذاق میں۔ یعنی کسی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ 20 سال تیاری کرتے ہیں، لاکھوں جمع کرتے ہیں، پھر اتنے کارڈ چھاپتے ہیں، رشتہ داروں کو مہینے پہلے سے بتاتے ہیں، درجنوں کپڑے جویور بنواتے ہیں، سالہ سال کا انتظام، اور اس کے بعد شامیانہ لگاتے ہیں، کھانے پکواتے ہیں، 200 لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر مولانا آتے ہیں، پھر وہ 2 لفظ پڑھتے ہیں۔ اتنی ویلیو ہے ان 2 لفظوں کی، اس لیے آدمی کو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بادشاہ کے لڑکے کو کسی عام آدمی نے گالی دے دی، بادشاہ آج کے زمانے کے نہیں، پورے 4 کانٹیننٹ کے، ساری دنیا کے سپر پاور بادشاہ کے لڑکے کو، شہزادے کو کسی نے گالی دے دی۔ بادشاہ نے اجلاس بلایا، مشورہ کیا، درباری جمع ہوئے، جنرل، کرنل، بڑے بڑے، کیا کرنا چاہیے، اس آدمی نے ایسا کیا۔ لوگوں نے کہا اس کی زبان کھینچ لو، इसकी जबान काट दो, इसको कैद कर दो, इसको मार डालो, इसको फाइन कर दो, इसने ऐसी हरकत क्यों की। बादशाह ने शहजादे की तरफ देखा, कहने लगा बेटा माफ कर दो, तुम्हें तुम्हारी अल्लाह ताला बरकत दे। बादशाह सलामत नौकर के साथ जा रहे थे सफर पर, वैसे तो शाही लश्कर होता है हजारों का, एक रात ऐसा हुआ कि सिर्फ एक खादिम एक नौकर साथ में है, वो खादिम भी सो गया। आधी रात को बादशाह को प्यास लगी, अरे भाई नौकर पानी लाओ। खादिम जो है वो नींद से उठा, बड़बड़ा के बेचारा परेशान, कहता है न दिन का चैन न रात का चैन, कहाँ फंस गया। दोबारा सो गया। बादशाह सलामत ने कहा कोई बात नहीं, उठे गए अंधेरे में टटोल के मटका तलाश किया, पानी खुद ही पी लिया, तो क्या फर्क पड़ गया। लोगों ने कहा आप इसको सजा दीजिए, निकाल दीजिए नौकरी से। उन्होंने कहा मैं इतने से एक नौकर के लिए अपनी जबान क्यों खराब करूं, खुद काम कर लिया। लुकमान हकीम को उनके मालिक फ्रूट खिलाते थे बाग में। एक दिन मालिक आ गए, लो लुकमान फ्रूट खाओ। लुकमान खुशी से खाते रहे, खुशी से खाते रहे, और लाओ और लाओ और लाओ। मालिक ने बीच में चखा कि देखूं कैसा है, तो देखा इंतहाई कड़वा था, पूरा जबान खराब हो गई। उसने कहा लुकमान तुम ऐसे मजे से खा रहे हो। लुकमान ने कहा आप इतने साल से मीठा खिला रहे थे, एक दिन कड़वा खिला दिया तो क्या हो गया। एक दिन कड़वा खिला दिया आपने तो क्या हो गया, मैं तुम्हें तो कुछ उसको भी खुशी खुशी खा लूं। अल्लाह भाई, ये हमारी गुजारिश है और इससे बहुत फायदा होगा उम्मत में और घरों में, जहाँ कहीं ऐसा देखें तो उनको उनके लिए दुआ की जाए और उनको समझाया जाए और बताया जाए। आप इसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया चंद मिनट लेकर, और बाकी कोई चीज़ आइंदा कभी पढ़ ली जाएगी। तो उलमा ने फरमाया कि बेहतरीन घर वाले और बेहतरीन अल्लाह पाक की सिफात तमाम बच्चियों में और उम्मत के तमाम खवातीन में सब में अता फरमा दे। बेहतरीन घर वाले ऐसे जिनके चेहरे पर शर्म व हया हो, जबान में मिठास हो, दिल में खैरखाही हो और हाथ काम काज में लगे, हाथ काम काज में लगे। अच्छा, गुस्सा सबको ही आता है, बड़ों को भी छोटों को भी, मर्दों को औरतों को। गुस्सा आए तो आउज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए और सामने से हट जाना चाहिए, बैठ जाए कहीं जाकर, लेट जाए, कोई जिक्र तिलावत दरूद शरीफ इसमें दूसरे काम में लग जाए। अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया इज्जत मिल जाएगी, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया तो इज्जत मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, मिसाल मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, देखा कि आयशा रदी अल्लाह अन्हा प्याले से पानी पी रही हैं कुछ। उन्हें फरमाया कि प्याले के जिस जगह आपने होंठ लगा के पानी पिया है, हम भी वहीं से पियेंगे, हम भी वहीं से पियेंगे, ऐसी मोहब्बत। दुनिया की सबसे आखिरी चीज़ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में गई, एक मुफ्ती साहब हमारे उस्ताद फरमा रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में लेटे हुए हैं और मिसवाक की तरफ इशारा किया, अभी चंद मिनट में दुनिया से रुख्सत होने वाले हैं, मिसवाक की तरफ इशारा किया। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने मिसवाक पानी में भिगो रखी थी, लेकिन नरम करने की ज़रूरत थी कि नरम हो तो इनके मुँह में जाए, तो उन्होंने अपनी ज़बान से चबा करके दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह में डाली, तो उनका लुआब यानी मुंह का सलाइवा, ये सबसे आखिरी चीज़ थी दुनिया की आयशा रदी अल्लाह अन्हा के मुंह का लगा हुआ, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में गया। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत। एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ ले गए, उम्मुल मोमिनीन इंतज़ार करती रहीं, इंतज़ार करती रहीं और दरवाजे के करीब सो गईं कि जब आएँ तो फ़ौरन नींद उठ जाए तो खैरियत पूछी जाए। दरवाजे के करीब सो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो देखा कि दरवाजे के एक पट के इधर सो रही हैं, अगर दरवाज़ा खुला तो ये उठ जाएंगी, इनको तकलीफ़ होगी। उन्होंने सोचा उनकी खैरख्वाही में कि जब आएंगे तो मुझे उठा देंगे तो मैं खैरियत पूछूं, और उन्होंने सोचा कि अब मैं इनको उठाऊंगा तो इनको तकलीफ़ होगी, नींद टूट जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की दूसरी तरफ ही ऐसी अब बिछा कर लेट गए। एक दरवाज़ा है, इधर अम्मा जान सो रही, इधर आप सो रहे हैं, और वो रात इस तरह गुजर गई। ऐसा, ऐसी आपस में मोहब्बत और प्यार, ऐसा मोहब्बत और प्यार। घर में अगर कोई गलत ऊंची नीच बात हो जाए तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि हक़ पे कौन है, कोर्ट में जाओ फैसला करो, ये सब नहीं होता। घर में कोई चीज़ हो जाए तो उन्होंने कहा कि 911 कॉल मत करो, 1 को कॉल करो, अल्लाह 1 को कॉल करो, अल्लाह को कॉल करो। फिर फरमाते हैं कि कुछ मैजिक अल्फाज हैं, जो जो कह देगा बस मसला ख़त्म हो जाएगा। क्या अल्फाज है वो? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आइंदा नहीं होगा, आइंदा नहीं करेंगे। आप सही फरमा रहे हैं, गलती हो गई, माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। मसला खत्म, मसला खत्म। एक दूसरे के लिए खूब दुआ की जाए। देखें, जब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे जो है कुछ वज़ाइफ भी हैं और कुछ दरूद शरीफ, कुछ बातें अल्लाह के नाम, उनसे पढ़ने से घरों में मोहब्बत बढ़ती है। सूरह अर्रूम की आयत नंबर 21 है, उसको बतौर वजीफे के पढ़ना चाहिए। ये मस्जिदों में पढ़ी जाती हैं ये आयत। और अल्लाह का एक नाम है मानिया, मानिया या मानिया, ये पढ़ना चाहिए रात को सोने से कबल, तस और तस्बीह के। इससे आपस में कोई रंजिश नाराज़गी हो दूर हो जाती। अरबी की कुछ दुआएं हैं, या मुकल्लिबुल कुलूब क़ल्लिब क़ल्बहा अला मुहब्बती, या मुकल्लिबुल कुलूब क़ल्लिब क़ल्बहु अला मुहब्बती। इनको पढ़ने से ये उन्होंने लिखा, मुजर्रिब हैं कि घरों में अगर मसले मसाइल होते हैं तो इनको पढ़ा जाए, इनको पढ़ा जाए। एक फरिश्ता जब से दुनिया बनी, बैठ करके क़यामत तक वो जन्नत के जेवर बना रहा है। फरिश्ता जन्नत के जेवर बना रहा है, उसका काम यही है, जेवर बनाओ और अंगूठी बनाओ, छिल्ले बनाओ, हार बनाओ, बैठ कर बना रहा है कि दुनिया की, और उनमें मोहीरे, मोती, डायमंड, रूबीज, पर्ल्स, ये सब उसमें दिन रात उसमें लगा रहा है। और उनमें से एक एक जेवर भी ऐसा है कि अगर उसको दिखाया जाए इस वक्त आसमानों में तो सूरज की चमक कम पड़ जाए। बैठ करके बना रहा है और इंतज़ार में है कि दुनिया की बेहतरीन मोमिनात यहाँ आएंगी, उनको ये जेवर पहनाए जाएंगे और उनको हूरों का सरदार बनाया जाएगा। एक हूर जन्नत की अगर आसमान से झांक ले तो ज़मीन और आसमान नूर और खुशबू से भर जाए। अगर वो एक उंगली सूरज को दिखा दे तो सूरज ठंडा हो जाए। समुंदर में थूक दे तो समुंदर का पूरा पानी मीठा हो जाए। ऐसी डिस्क्रिप्शन है हूर। और उन हूरों से 70,000 गुना ज्यादा ईमान वाली मोमिना यहाँ की औरतें खूबसूरत कर ली। दुनिया का क्या गम भाई, आखरत हमारी है। अल्लाह अकबर। अम्मा हव्वा को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया, मशहूर है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि उनके सर पर से नहीं पैदा फरमाया कि कहीं सर पर ना बैठाए इंसान, और पैर में से इसलिए नहीं पैदा फरमाया कि कहीं पैर की जूती ना बना ले, बल्कि अब असली से पैदा फरमाया कि शौहर अपनी बीवी को अपने दिल में बैठा ले। ऐसा सबब, शौहर अपनी बीवी को अपने दिल में बैठा ले। अल्लाह पाक है, जितने भी घरों में कुछ हालात हैं अल्लाह पाक उसको हल फरमाए, अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसा कि अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनकी अजवाज मुतहरात में थी। दरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर लीजिए, और अपने लिए, उम्मत के लिए, और उम्मत में जिन जिन घरों में कुछ हालात हों, कोई ऊंच नीच है, अल्लाह पाक उनमें मोहब्बत अता फरमा दे, सब के लिए दुआ फरमा दे, सब के लिए दुआ फरमा दे। दुनिया का एक आंसू जहन्नम की आग बुझा देगा, लेकिन अगर यहाँ से चले गए तो वहाँ पर हज़ारों साल रोना काम नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर आदमी तौबा कर ले, अल्लाह से मांग ले, अपने लिए, उम्मत के लिए, सब के लिए खूब दुआएं करें। आज की दुआएं खास तौर से शौहर और बीवी के दरमियान, और उनको क्या दुआ मांगनी चाहिए एक दूसरे के लिए, ये दुआएं हैं, याद कर लें, अंग्रेजी में लिख लें, अपनी जबान में लिख लें और मांगें, फिर देखें घर में आप और दोनों जो है अल्लाह के वली बन जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاءون من أمر يكون، يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، या अल्लाह हमारे घर वालों को हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे घर वालों के दर्जात बुलंद फरमाइए, उनके गुनाहों की बख्शिश फरमा दीजिए, उनको दुनिया आखरत की हर भलाई अता फरमाइए। اے اللہ ہمارے گھر والوں کو علم اور عمل میں برکت دیجئے، دین کی سمجھ دیجئے، نیک کاموں کی توفیق دیجئے. اے اللہ شیطان اور نفس کی مکاریوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ان کے دل اور زبان اور آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ان کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے، انبیاء اور صحابہ صحابیات صالحین اور صالحات کے ساتھ ان کا حشر فرمائیے. اے اللہ آپ کی رضا کی خاطر ہمیں ان سے دینی محبت ہے، ان کو ہدایت عافیت مغفرت اور جنت الفردوس عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں کے جھگڑے یا وقت کی بربادی یا فضول بیکار باتوں کی نحوست، اس سے ہمیں پاک کر دیجئے. اے اللہ پوری امت کے گھروں کو بے برکتی سے پاک فرما دیجئے، غصے کی نحوست سے پاک فرما دیجئے. اے اللہ شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں بھڑکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اے اللہ شیطان کو ہمارے پاس سے بھگا دیجئے، ہمارے گھر والوں کے پاس سے دور کر دیجئے. اے اللہ پوری دنیا میں جو بہترین اخلاق والے لوگ ہوں، نیک شریف آپ نے پیدا فرمائے، اے اللہ انبیاء صدیقین صالحین امہات المومنین عالم عالمات، اے اللہ ان سب کی اچھی باتوں کو ہمارے گھر والوں میں ڈال دیجئے. اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں میں ڈال دیجئے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو شرم و حیا خوب بڑھا کر عطا فرمائیے. اے اللہ ان کو نیکی اور تقوی کی بلندیوں پر پہنچا دیجئے، اخلاص اور خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں بھر دیجئے. اے اللہ ان کی زبانوں پر ذکر و تلاوت تسبیحات درود اور استغفار جاری فرما دیجئے. اے اللہ ان کے دلوں میں نیک باتیں اور اچھی نیتیں اور دعائیں جاری فرما دیجئے. اے اللہ ان کو خاندانوں اور محلوں میں دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ان کے ہر عمل کو اپنی پسند کے مطابق کر دیجئے، نیکیوں کے پہاڑ بنا دیجئے. اے اللہ یہ دعائیں امت کے ہر بھائی و بہن کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں میں آج تک جتنا غصہ لڑائی جھگڑا ہوا، اے اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما دیجئے. اے اللہ جتنی بدزبانی غیبتیں شکایتیں ہمارے گھر میں ہوئی ہیں، اے اللہ ان سب سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ جتنی بے پردگی یا کوئی گناہ ہوا، اے اللہ سب سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے چہروں پر نور ڈال دیجئے، دلوں میں نیکی ڈال دیجئے. اے اللہ زبانوں کو میٹھا بنا دیجئے. اے اللہ حیا اخلاص تقوی اور تواضع توکل عطا فرمائیے. اے اللہ بدگمانی اور شک اور عیب جوئی اور حسد اور جلن سے ہمیں پاک کر دیجئے. اے اللہ دنیا کا چھوٹا ہونا ہمیں سمجھا دیجئے. اے اللہ آخرت کا بڑا ہونا سمجھا دیجئے. اے اللہ آپ کی خوشی کے لیے ہمیں رشتہ داروں پڑوسیوں ملک والے ساری امت اور ساری مخلوق سے دینی محبت ہے. اے اللہ ہر ایک کے لیے ہدایت اور کامیابی کے دروازے کھول دیجئے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک ہمارے دوست اور پڑوسی اور یہاں محلے میں رہتے تھے، جاوید سکندر صاحب کے والد صاحب کا انڈیا میں انتقال ہو گیا ہے. حضرت خود عالم بھی تھے، مولانا سلیمان سکندر صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا مغفرت کر دیجئے. سب لوگ مل کر دعا مانگیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. ہمارے جن گھر میں حلقہ ہوتا ہے، ہماری بہن ہے، ان کے کزن، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیجئے. اللہ پاک درود شریف سورہ اخلاص سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، پھر دعا ہوگی. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ، اے اللہ جن مرحومین کا انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے. اے اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان کے گھر والوں کو، سب لوگوں کو، یا اللہ صبر جمیل عطا فرمائیے. اے اللہ قبر کے سوال و آخرت کی سختیوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر آخرت میں ہر طرح کا راحت آرام چین سکون عطیف فرمائیے. اے اللہ ان کے پیچھے جو ان کے اسباب اور چیزیں، ان کے وصیت نامے، ان کی خواہشات، اے اللہ ان سب پہ شرعی طور سے، اسلامی طور سے عمل فرما دیجئے. یا اللہ مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. دیجئے، ان کے لواحقین اور جو لوگ رہ گئے ان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرمائیے، ان کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا رب.